बरसों पहले धरती पर इंसान ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का मतलब निकालना शुरू किया। फिर साइंस ने हमें बताया कि ये बस प्राकृतिक घटनाएं हैं। पूरी सच्चाई किसी को पता नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सीमाओं के सामने हमारा अस्तित्व एक धूल के कण से बढ़कर नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, प्लैनेट्स, स्टार्स, इस धरती से बाहर हम कितना जानते हैं? पूरी दुनिया में सदियों से कई जगहों पर कई तरह के स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ ही उन जीवों का जिक्र होता है जो धरती पर नहीं पाए जाते हैं। बार बार ये ब्रह्मांड, इसकी घटनाएं हमें चौंका देती हैं। अगर आप कालशंकु दूसरा अध्याय पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया यहीं रुक जाएं। कहानी के किरदारों और घटनाओं के सीक्वेंस और इंपॉर्टेंस समझने के लिए जरूरी है कि यह कहानी शुरू से सुनी जाए। धन्यवाद। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी, कालशंकु दूसरा अध्याय भाग 10। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। लगभग 1:15 बजे सभी लोग उस पहाड़ पर ऊपर पहुंच चुके थे। आसमान में एक अलग ही नजारा था, ऐसा नजारा जैसा धरती पर किसी ने नहीं देखा होगा। आसमान में 5 ग्रह एक खास पैटर्न में दिखाई दे रहे थे। ये पैटर्न ठीक वैसा था जैसा उस कोन पर बना था, उस किताब में बना था। सुशांत ये नजारा देखकर हैरान हो गया। उसके मुंह से निकला, व्हाट इज दिस? अनंत ने कहा, ये कोन जिसे ये लोग कालशंकु कह रहे हैं, इस पहाड़ को रिप्रेजेंट करता है और इस कोन पर बने ये डॉट्स इन प्लैनेट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुशांत के मुंह से निकला, ओह आई सी, बट वो कोन, कालशंकु क्या काम करता है? वो लोग वहां चारों तरफ देखने लगे। वहां एक तरफ समतल जमीन पर पत्थरों से एक गोल ढांचा बना था जिसके बीच में एक चौकोर आकृति बनी हुई थी। उसे देखकर अनंत ने कहा, ये जगह किसी रिचुअल के काम आती है जिसमें कालशंकु काम आता है। तभी सुशांत ने पहाड़ की एक चट्टान को देखते हुए कहा, वो उधर क्या है? अनंत ने उस तरफ देखा जहां पत्थरों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे, ठीक वैसे जैसे प्राचीन सभ्यताओं की केव पेंटिंग्स में होते हैं। टेढ़े मेढ़े निशानों में बने ये चित्र आसमान में उन 5 ग्रहों की रोशनी में हल्का सा चमकने लगे थे। अनंत ने अविश्वास के साथ कहा, ये कैसे मुमकिन है? अनंत के हावभाव ने सुशांत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। अनंत ने उन चित्रों के खास सीक्वेंस को समझाने की कोशिश की। जैसे ही सुशांत को इस सीक्वेंस समझ आ गया, वो भी बोल पड़ा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये चीज सच नहीं हो सकती है। अनंत ने कहा, यही सच्चाई सुशांत, यही सच्चाई है। असल में उन चित्रों के मुताबिक इस जगह पर एक दिव्य व्यक्ति उस इंसान की मनोकामना पूरी करता है जिसके पास शंकु होगा। सुशांत ने एक बच्चे की उत्सुकता के साथ पूछा, लेकिन ये कौन है और कहां से आएगा? अनंत ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं, बस हम अंदाजा लगा सकते हैं, असलियत ये लोग ही जानते हैं। सुशांत इस वक्त बड़ी गहराई से सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। अनंत ने उसके विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हुए कहा, तुझे लगता है ये बल्ली इस कालशंकु के सही हकदार हैं? सुशांत जो अब तक कालशंकु के बारे में काफी कुछ समझ चुका था, उसने अनंत की आंखों में झांकते हुए पूछा, तू कहना क्या चाहता है? अनंत ने कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि, कैसे बताऊं यार, तू जानता है कि ये कौन, ये कालशंकु, ये जो भी कुछ है, ये कितना पावरफुल है। हमने खुद ने देखा है कि इतनी सारी चीजें कनेक्टेड हैं इसके साथ, जिन्हें एक्सप्लेन करना तो दूर, सोचना भी मुश्किल है। सुशांत ने कहा, तू साफ साफ कहना, क्या कहना चाहता है? आखिर अनंत ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां इन चित्रों में जो कुछ लिखा है वो सब सच है, तो थोड़ी देर में कोई मैजिकल फिगर, कोई दिव्य पुरुष यहां आएगा और जिस किसी के पास ये कौन है उसकी विश पूरी करेगा, उसे कोई वरदान वगैरह दे देगा। सुशांत ने उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा, लगता तो यही है। अनंत ने छूटते ही कहा, तो तुझे लगता है ये बल्ली, ये डकैत, ये वरदान डिजर्व करते हैं? इंसान को मार डालने में इन्हें वक्त नहीं लगता। तूने खुद ने देखा, पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। अगर इन्हें कोई सचमुच की पावर मिल गई तो ये उसका मिसयूज नहीं करेंगे। सुशांत सोच, ये क्या क्या नहीं कर सकते उसके साथ। अब सुशांत भी सोचने लगा था। कह तो तू ठीक रहा है, अनंत ने पूछा, तो फिर? सुशांत ने ठंडा सा जवाब दिया, मगर हम कुछ नहीं करेंगे। सुशांत के सपाट जवाब ने अनंत को चौंका दिया। उसने कहा, यार तू जानते बूझते क्या कह रहा है। अनंत को लग रहा था जैसे अब सुशांत उससे निगाहें चुरा रहा है। सुशांत ने जवाब देना शुरू किया, देख हम इसलिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि मेरी इनके साथ डील हुई है। अनंत चौंक पड़ा, क्या डील हुई है? कैसी डील? सुशांत के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट तैर गई। अब उसने अनंत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुझे पता है उस रात को जब हम पहली बार बल्लियों को ढूंढने गए थे, तब मैंने इस बबूती से क्या बात की थी? मैंने इसे साफ साफ ऑफर दे दिया था कि तुझे जो चाहिए वो मैं ला कर दूंगा, पर मुझे बदले में उसकी कीमत चाहिए। और पता है इस बबूती ने मुझे क्या कीमत देने का वायदा किया था? अनंत को यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत के मुंह से उसे ये सब सुनने को मिलेगा। सुशांत ने आगे कहा, इसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अगर मैंने अपना काम कर दिया तो ये मुझे मुंह मांगी कीमत देगा। मुंह मांगी कीमत? हां मुंह मांगी कीमत। अनंत अब तू बता, मैं इसे वो कौन क्यों नहीं दूं? सुशांत के जवाब ने अनंत को चुप करा दिया था। अब उसे यह भी समझ आ गया था कि सुशांत बल्लियों को लेकर इतना बेफिक्र क्यों था। तभी सुशांत ने आगे कहा, और हां एक बात और, तू जबरदस्ती यहां हीरो बनने की कोशिश मत करना, यह वाकई में बहुत खतरनाक है। पलक झपकते इंसान को काट डालते हैं, इनसे मत उलझना, क्योंकि अब की बार मैं तुझे इनसे नहीं बचा पाऊंगा। जब सुशांत अनंत से यह बात कह रहा था, उस वक्त अनंत ने उसकी आवाज में कुछ महसूस किया, एक किस्म का गुरूर, एक लालच, एक तरह का पागलपन। उसे लग रहा था जैसे इस वक्त उसके सामने उसका दोस्त सुशांत नहीं खड़ा था, बल्कि लालच और गुरूर उसके दोस्त की शक्ल बनाए उसे घूर रहे थे। उसने फिर से कहा, सुशांत क्या हो गया है तुझे? अब उसे सुशांत की आवाज में एक अलग सी गुर्राहट महसूस हुई, एक ऐसी गुर्राहट जैसे किसी शिकारी जानवर के अपने शिकार पर झपटने से पहले सुनाई देती है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूं। तू पागल हो गया है जो इस काम में रोड़ा अटकाने का सोच रहा है। तुझे कह रहा हूं चुप रह, हम लोग यहां से अमीर बन के निकलेंगे, एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसके बारे में हमने केवल ख्वाब देखे हैं, इसलिए जो कह रहा हूं मान जा, चुपचाप देखता रह, जो होता है हो जाने दे। लेकिन अनंत नहीं माना। उसने सुशांत पर गरजते हुए कहा, यकीन नहीं होता, तू वही सुशांत है? तू पैसों के लिए इन दरिंदों का साथ देगा? अनंत ने इस बार अपनी बात थोड़ा जोर से कह दी थी, इतनी जोर से कि इसने भभूति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो उनकी तरफ ही आ रहा था कि सुशांत ने अनंत पर बरसते हुए कहा, पागल मत बन अनंत, तू अकेला इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अनंत ने कहा, अकेला? मुझे लगा मेरा दोस्त सुशांत मेरे साथ है। सुशांत को गुस्सा आ गया। वो उसे जवाब देने वाला था, लेकिन उससे पहले भभूति की आवाज उसे सुनाई दी, क्यों रे? अब तो थारी आवाज से भी मने एलर्जी हो गई है, थारी बोली भी मने चुभ रही है। भभूति अपने साथियों के साथ उनके पास पहुंच चुका था। काई गड़बड़ चल रही है? भभूति ने सुशांत की तरफ देखा, लेकिन सुशांत ने ठहाका लगाते हुए कहा, मेरे रहते कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? भभूति ने नहले पर दहला मारा, वही तो मैं कहूं, जब तू अट्ठे मौजूद है तो फिर यो बिलाव इतनो क्यों फड़फड़ा रही हो है? क्यों रे सैरे बिलाव? हाँ भभूति और उसके सारे साथी ठहाका लगाकर हंस पड़े, यहां तक कि सुशांत भी उनके साथ ही हंस रहा था। भभूति आगे बढ़ा और अनंत के एक चपत लगाते हुए बोला, लग रहे है कि मने थारी आवाज से एलर्जी है और तने मारी सकल से एलर्जी है, चल आज इलाज करी देवा। ये कहते हुए भभूति ने अपनी रिवॉल्वर उसके सिर पर तान दी। ये सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि अनंत को कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल पाया। भभूति ने रिवॉल्वर की नोक उसकी कनपटी से सटा दी थी। अनंत को महसूस हो गया कि इस वक्त उसकी जिंदगी का मालिक पूरी तरह से भभूति है। अनंत को रिवॉल्वर की ट्रिगर पर भभूति की अंगुलियों में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज सुनाई दी,
भभूति।
भभूति कुछ करने वाला था लेकिन बूढ़े की आवाज ने उसे रोक दिया। बूढ़े के इस तरह टोकने ने भभूति को गुस्सा दिला दिया।
रुक जा डोकरा,
मारे बीच में मत बोले।
लेकिन वो बूढ़ा नहीं रुका, वो भभूति से किसी बात की बहस करने लगा। अनंत समझ नहीं पा रहा था कि ज्यादा अजीब क्या है, उस अनजान शख्स का उसका साथ देना या उसके अपने दोस्त का उसका साथ छोड़ देना। उसने एक निगाह सुशांत की तरफ देखा लेकिन सुशांत ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। बूढ़ा और भभूति दोनों किसी बात पर बहस किए जा रहे थे लेकिन भभूति की तेज आवाज ने उस बहस का अंत कर दिया।
अब तू चुप हो जा, मन हमारे हिसाब से खत्म करने दे।
यह कहता हुआ भभूति अनंत की तरफ झपटा।
साले जब से तू आया है तब से तू मने खल रहा है। वो तो अगर थारे दोस्त ने ना कही होती तो तने तो मैं कब को काट के फेंक दियो। तो तू समझ ले, जहां भभूति खड़ा होता है पूरा इलाका भभूति का होता है। वहां चलने वाली हवा तक भभूति की परमिशन से बहती है और तू यहां अपने कायदे कानून लगाना चाहता है। सुन ले मेरी बात, बल्ली हैं हम बल्ली। कायदे कानून तो हमने अंग्रेजों के भी नहीं माने थे, तू किस खेत की मूली है? आखिरी बार कह रही हूं, अठे मारो हुक्म चाले है, कोई और को नहीं। मानता है मेरी बात कि नहीं?
चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अनंत सिर झुकाए खड़ा था। उसने फिर से एक निगाह सुशांत की तरफ डाली लेकिन इस बार सुशांत ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। भभूति फिर से दहाड़ा,
मानता है मेरी बात या नहीं?
अनंत फंस चुका था। वो जानता था कि इस वक्त समझदारी इस पागल की बात मानने में ही है। उसने धीरे से कहा,
हां मानता हूं।
भभूति के चेहरे पर एक मुस्कान तैर आई। उसके पीछे खड़े बूढ़े ने भी कुछ रिलैक्स्ड फील किया लेकिन नहीं, भभूति को कुछ और भी चाहिए था।
अगर मानता है तो मेरे कदमों में झुककर कहे कि मेरी बात मानता है, वरना।
भभूति पर पागलपन हावी था। अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन डकैतों के पास फंसने वाले लोग जिंदा क्यों नहीं बचते थे। अनंत समझ चुका था कि इस वक्त जिंदा रहने का बस एक रास्ता है और वो है भभूति के कहे मुताबिक उसकी बात मानना। वो उसके पैरों में झुक गया और कहा,
मैं मानता हूं।
भभूति हंस पड़ा। वातावरण में उसकी विभत्स हंसी गूंज पड़ी। उसने अनंत को ठोकर मारकर गिरा दिया और चिल्लाया,
मगर जिंदा तो तू फिर भी नहीं रहेगा। वो काई है कि थारी आवाज से मने एलर्जी है।
भभूति ने उस पर बंदूक तान दी। अनंत ने डरकर कहा,
नो नो नहीं। अरे हाँ रे,
भभूति जोर से हंसने लगा। उसके साथ उसके साथी भी हंस रहे थे। अनंत इस बार यह जज नहीं कर पा रहा था कि सुशांत भी उनके साथ हंस रहा है या नहीं। तभी उसकी निगाह बूढ़े की तरफ गई। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों ही आंखों में बात हुई। उसे बूढ़े की आंखों में उसके लिए संवेदना महसूस हुई, जैसे वो बूढ़ा उसे आश्वस्त करना चाहता हो। मगर उसके बाद उसने भी निगाहें चुरा ली। भभूति ने अनंत की तरफ अपनी रिवॉल्वर की नली तान दी और ट्रिगर दबाने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही वहां आवाज गूंज उठी, ठहरो। सभी की निगाहें सुशांत की तरफ घूम गई थीं, क्योंकि उसने भभूति को अपने शिकार पर हमला करने से ठीक पहले रोक दिया था। ऐसी हिमाकत, जैसे शेर को अपने शिकार पर झपटने से ठीक पहले किसी ने रोक लिया हो। भभूति ने गुस्से में सुशांत की तरफ देखा, जैसे उसकी इस हिमाकत की वजह जानना चाहता हो। सुशांत दो कदम बढ़कर आगे आया और उसने भभूति से कहा,
ये ऐसे नहीं मर सकता, मेरा दोस्त है ये।
अनंत जो बचने की उम्मीदें छोड़ चुका था, उसने सुशांत की तरफ देखा और सुशांत वो तो इस वक्त एक तूफान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था।
इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ये अब कुछ नहीं बोलेगा।
ये कहकर सुशांत अनंत के पास आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे कहा,
चल खड़ा हो जा।
अनंत को सुशांत में वापस से अपना पुराना दोस्त नजर आ रहा था। उसने कसकर सुशांत का हाथ पकड़ लिया। दोनों दोस्तों के बीच खड़ी दीवार एक सेकंड में गिर गई। अनंत सुशांत से इस वक्त काफी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन गुस्से से उबल रहा भभूति भी काफी कुछ उगलना चाहता था। वो दहाड़ उठा,
मैंने पहले कह दी थी कि मारे फैसला के बीच में कोई को नहीं बोल सके है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी रे।
सुशांत को समझ आ गया था कि उसने क्या गलती कर दी है। उसने बात को संभालने की कोशिश की, हम एक मिनट बात कर।
आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 10। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।